ओम शांति। भाई जी का शुभ नाम राजू भाई है। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव में हुआ। मां पिता को अध्यात्म में विशेष रुचि थी। सन 1960 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियां आपके ही लौकिक घर में शुरू हुई। आप अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ते रहे और सन 1971 में आप प्रथम बार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू आए। उसी समय आपके मन में समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं करने की इच्छा जागृत हुई। अतः माता पिता की स्वीकृति लेकर आप 1972 में विश्वविद्यालय की सेवाओं में समर्पित हो गई। आपने मुख्यालय की विभिन्न गतिविधियों में विशेष रुचि ली और मनसा वाचा कर्मणा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट में सेवाएं करते हुए आप 1976 से विशेष ईश्वरीय महावाक्यों को सिंधी से हिंदी में अनुवाद कर टाइप करके उन महावाक्यों को सभी सेवा केंद्रों पर भेजने की सेवा में सहयोगी बने। वर्तमान समय देश विदेश में जो भी ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं अथवा जो आध्यात्मिक पढ़ाई के लेसन हेडक्वार्टर्स से भेजे जाते हैं उसमें आपका विशेष योगदान है। ईश्वरीय विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए उसमें विशेष सार रूप में वरदान अथवा स्लोगन के रूप में धारणा के रूप में विशेष पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप सबके पास भेजते हैं। मुख्यालय से जो प्रति मास स्व उन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे परमात्मा प्रेरणाएं दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता है वह आप ही प्रकाशित कर सबके पास पहुंचाते हैं। आपको परमात्मा पिता द्वारा अव्यक्त रूप में विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। आपने ईश्वरीय महावाक्यों से हर वर्ग की आत्माओं के प्रति प्रेरणाओं को संग्रहित कर समय प्रति समय अनेक पुस्तकें भी तैयार की है। इन सब सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय में जो दादी जी के पास पत्र आते हैं उन पत्रों का उत्तर आदि देने का कार्य भी आप देखते हैं। हिंदी टाइपिंग के साथ साथ फोटोकॉपी डिपार्टमेंट तथा विशेष स्टेशनरी आदि भी आप ही संभालते हैं। ग्राम विकास प्रभाग द्वारा देश विदेश में बहुत सेवाएं भी दे रहे हैं। सतत अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरा हुआ है तथा योग की जो गहन अनुभूति की है उसके आधार पर आप अपनी क्लासेस अथवा प्रवचन के द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते रहते हैं। आज भी हम सबको परिवर्तन का आधार बेहद के वैराग्य वृत्ति इस विषय पर लाभान्वित करेंगे। आप सबके ओर से मैं राजू भाई को स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति। आज हम सभी ने अपनी आदरणीय दादी जी के द्वारा अभी अभी कुछ प्रेरणाएं सुनी थी, जिसमें विशेष दादी जी ने अंडरलाइन किया कि जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो मधुबन में छोड़ करके जाना और मधुबन की सौगात बाबा को दिल में बिठा करके जाना। तो सभी ने बड़े प्यार से, पूरे क्लास ने उसमें हाथ भी उठाया, तालियां भी बजाई, लेकिन आज जो मुझे विषय मिला है उस विषय के अंतर्गत परिवर्तन का आधार वैराग्य वृत्ति है। अगर आप अपनी कमजोरियों को छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ हाथ उठाने से और कहने से नहीं छूटेंगे। बहुत समय से पुरुषार्थी आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन बार बार पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, कोई न कोई माया का रूप बीच बीच में वार करता है, अटैक करता है। किस विधि से हम अपनी कमजोरियों को परिवर्तन कर सकते हैं, आज उसी विषय को लेकर के ये विशेष वैराग्य की बात आई है। आप सबने बाबा की बहुत सी मुरलियों में सुना होगा, मुक्ति का गेट खोलने का साधन वैराग्य वृत्ति है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का परिवर्तन, उसका आधार भी वैराग्य वृत्ति है। दुनिया के अंदर जब किसी को किसी चीज से वैराग्य आता है तो वैराग्य के बाद त्याग करना बहुत सहज होता है, बिना वैराग्य के त्याग नहीं होता। जिसने भी अपने घर बार को छोड़ा, संन्यास लिया, कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां उसके आगे घटी, ऐसी घटनाएं दुख की उसके सामने आई, ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो वो देखकर घबराकर वैराग्य आकर उसको छोड़कर चला गया। लेकिन बाबा ने हम सब बच्चों को हद का वैराग्य नहीं सिखाया, घर बार का वैराग्य नहीं सिखाया, परिवार का त्याग नहीं सिखाया, लेकिन मनोवृत्तियों से विकारों का संन्यास हो जाए, देह और दैहिक दुनिया का संन्यास हो जाए, उसके लिए बाबा हम सबको बेहद के वैराग्य की प्रेरणाएं दे रहे हैं। और जब तक हम सभी ब्राह्मण आत्माओं में वैराग्य की लहर नहीं आएगी तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। हम सब देख रहे हैं माया की इस चकाचौंध के अंदर, कलयुग में बाबा कई बार कहते हैं कि माया का ऐसा पंप है जो भी एक बार तो सतयुग जैसे सब साधन उपलब्ध करा देती है। जैसे हम सब देख रहे हैं साइंस ने इतनी उपलब्धियां, इतने साधन दिए हैं, जो साइंस के साधनों पर आधारित आत्माएं हैं, अगर कुछ समय के लिए वो साइंस फेल हो जाए, वो साधन छूट जाए, तो उनका जीना दुर्लभ है। ऐसी आज की इस कलयुग के अंदर भिन्न भिन्न उपलब्धियां माया के राज्य में माया ने हम सबके आगे प्रस्तुत की हैं। और बाबा अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, मेरे बच्चे राज ऋषि बच्चे हो। राज ऋषि किसको कहा जाता, केवल हमारा ये टाइटल नहीं है, केवल हमने ये उपाधि नहीं प्राप्त की है कि हम राज ऋषि हैं, लेकिन राज ऋषि का अर्थ है बेहद का वैरागी, जिसको संसार में रहते, राजाई में रहते ये संसार असार अनुभव होने लगे, उसको राज ऋषि कहा जाता है। अगर संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ, सांसारिक मान शान सुविधाएं आकर्षित करती हैं, तो राज ऋषि कहलाने का हमें हक नहीं रहता। इसलिए बाबा जब राज ऋषि और दूसरा मधुबन निवासी दो नाम देते हैं, तो इन दोनों के अर्थ स्वरूप में स्थित रहने की प्रेरणा देते हैं। मधुबन दो शब्दों से बना है, मधु और वन। मधु जो मिठास का प्रतीक है, शहद है, ऐसी जीवन जिसके अंदर मधुरता है, दिव्यता है, और साथ साथ वन की स्थिति है वैराग्य की, किसी में भी आकर्षित नहीं है। ऐसे आप सभी जिस स्थान पर रहते हो, बाबा हमेशा अपने ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस क्या बताते हैं, आप हमेशा समझो हम सभी मधुबन निवासी हैं। कहीं पर भी रह रहे हैं, केवल ऑफिस वर्क के लिए रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस मेरा मधुबन है। इस स्मृति से आपको वैराग्य भी रहेगा और मधुरता भी जीवन के अंदर रहेगी। ऐसे ही ये राज ऋषि शब्द का भी बहुत गहरा अर्थ है। ऋषि पवित्र आत्माओं को कहा जाता है, ऋषि वैरागी आत्माओं को कहा जाता है, लेकिन हद के नहीं, बेहद के। खान पान का वैराग्य आ गया, संसार से वैराग्य आ गया, बीवी बच्चों से वैराग्य आ गया, हद के लौकिक परिवार से वैराग्य आ गया, और छोड़ करके जंगल में चला गया, तो बाबा उसको कहते हैं ये मसानी समसानी वैरागी है, थोड़े समय के लिए आया, और जब वो वैराग्य पूरा हो जाता है तो सब फिर से वही चीजें पुराने दुनिया की उसको आकर्षित करने लगती हैं। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा बहुत ऊंची नजर से देखते हैं कि मेरे राज ऋषि बच्चे सारे कार्य व्यवहार को संभालते हुए, परिवार में प्रवृत्ति में रहते हुए कितने न्यारे और कितने प्यारे हैं, किस चीजों से इनको वैराग्य है, हद के साधनों से वैराग्य नहीं है। साधन तो बाबा ने हम सबको सेवा के लिए दिए हैं, लेकिन साधनों के बीच में रहते हुए साधना में हमारी स्थिति बनी रहे, साधना हमारी कम न हो, उसको ही वैरागी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा वैराग्य है, पांच छह बातों का वैराग्य मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा, जिसके आधार से ही परिवर्तन आ सकता है। जैसे आप सबने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी, ब्रह्मा बाबा को कब वैराग्य आया, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा बिजनेस, राजाई ठाट बाट में बाबा का जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन अचानक बाबा को इस सृष्टि के विनाश का भयंकर साक्षात्कार हुआ, और ऐसा साक्षात्कार जिसमें उन्होंने इस दुनिया को बहुत बुरी तरह से तबाह हुआ देखा, कैसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी जा रही हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, भाई भाई को खून कर रहा है, ऐसी दर्दनाक सीन बाबा को दिखाई दी। और उस समय बाबा की आंखों में आंसू थे और अंदर का ये आवाज था कि ऐसा इस विश्व का हाल होने वाला है क्या, अब ये दुनिया जाने वाली है। बस बाबा को वैराग्य आ गया, उन्होंने सब बातों से अपने आप को उपराम कर लिया, बिजनेस को समेट दिया, जो भी आपके लौकिक कार्य व्यवहार थे सब से निवृत्त होकर बाबा न्यारा बन गया, तपस्या करने लगा। लेकिन बाबा को उनके द्वारा नई दुनिया बनानी थी, इसलिए बाबा ने उनसे और कोई संन्यास नहीं कराया। घर गृहस्थ में रह करके, परिवार में रह करके कैसे नई स्वर्णिम दुनिया बनानी है, बाबा ने कन्याओं माताओं को आगे कर उनका ट्रस्ट बनाकर अपनी संपत्ति समर्पित की। और जिस दिन से संपत्ति समर्पित कर दी, आप सबने पढ़ा होगा, बाबा ने उस संपत्ति को, उस पैसे को हाथ नहीं लगाया, पूछा ही नहीं, त्याग माना त्याग। उसके बाद क्या हुआ कभी बाबा ने उसका हिसाब नहीं लिया, समर्पित कर दिया, तन को बाबा को दे दिया कि शिव बाबा का ये माध्यम है। कभी भी तन का अभिमान नहीं आया, बच्चे दे तो उसकी है, वो इसको खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, मैंने तो उसको किराए पर दे दी। बाबा ने अपने आप को बिल्कुल देह से भी देहातीत बना दिया, धन का भी संन्यास हो गया, तन का भी हो गया, और मन में बाबा को बसा लिया, बस मन मनाभव हो गया। संकल्प श्वास अंत तक अपना कभी नहीं समझा, ये मेरा है, सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके जीवन में अंत तक वैराग्य दिखाई देता था, साधन सब इकट्ठे किए हुए। पाकिस्तान में भी जब कराची के अंदर 14 वर्ष तक भट्टियां चली, कोई चीज की कमी नहीं थी, सब साधन थे, सब सुविधाएं थी, लेकिन वैराग्य वृत्ति का वातावरण था, वायुमंडल था, कोई को कोई दुनिया की चीज याद नहीं, कोई चीज की आकर्षण नहीं। बाबा अभी इस अंतिम समय में भी हम सबको यही इशारा कर रहे हैं, समय हमारा शिक्षक बने, समय पर वैराग्य आए तो समय हमारा शिक्षक हो जाएगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे समय के पहले अपने आप को वैराग्य वृत्ति से परिवर्तन कर लो, इमर्ज करो कि अब वापस जाना है, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है, इसलिए किसी चीज में भी लगाव झुकाव न हो। वैराग्य के दो अर्थ मैं आपके सामने रख रहा हूं, वैर और राग।
Please. प्रभु का ध्यान की
शब्द के दो अर्थ, न किसी से वैर है न किसी से राग है, न कोई अपनी किसी से विशेष मित्रता है और न किसी से दुश्मनी है। अगर राग है माना कहीं न कहीं लगाव है, तो जहां लगाव होता है वहां झुकाव शुरू हो जाता है, प्रभाव पड़ने लगता है और फिर दबाव में आत्माएं रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस असार संसार में न किसी व्यक्ति से विशेष कोई लगाव हो। कई बार कईयों की विशेषताओं से लगाव हो जाता है, वही अच्छा लगता, उसी से मिलना, बात करना, बैठना, हंसना, बहलना, फोन करना, लगाव उसके चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। वैसे भी जब कोई चीज लग जाती है तो क्या होता है, अगर आप कोई चीज बना रहे हो, तले में लगने लगे तो उसकी बदबू फैलती है, उसकी सुगंध बिगड़ जाती है। तो बाबा भी कहते हैं जहां पर कहीं पर भी थोड़ा सा भी किसी देहधारी से, किसी की विशेषताओं से लगाव हो गया तो थोड़े समय में उसकी बदबू वातावरण में फैलने लगती है कि इसका इसके साथ विशेष लगाव है, ये इसी के साथ बात क्यों करता है, ये इसी से क्यों मिलना चाहता है, इसका इसके साथ क्या है विशेष। तो जिसका वैराग्य वृत्ति है उसका किसी भी देहधारी में किसी भी वस्तु में विशेष लगाव नहीं होगा, वो प्रभावित नहीं होगा और किसी से भी वैर नहीं रखेगा, कोई कैसा भी क्यों न हो। ये दोनों ही वैरागी आत्माएं इनसे मुक्त रहती हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे, सबसे पहला वैराग्य हम सबका है व्यर्थ और नेगेटिव बातों से। जो व्यर्थ बातें हैं जिनसे कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे इन बातों से तुम्हारा क्या लेना देना है। अगर कोई आत्मा को कोई अपना हिसाब किताब है, कोई उसके अपने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, तुम अगर बहुत शुभ चिंतक हो तो शुभ चिंतक भावनाएं रखो, लेकिन अपनी स्थिति मत बिगाड़ो। व्यर्थ वातावरण बना करके, व्यर्थ चर्चा करके, उस व्यर्थ को फैलाने में निमित्त नहीं बनो। व्यर्थ करने वाला एक होता है और अगर चर्चा करने वाले 5-10 होते हैं तो जितना व्यर्थ के ऊपर, व्यर्थ करने वाले के ऊपर पाप चढ़ता है उससे अधिक वातावरण बनाने वाले पर चढ़ता है। इसलिए वैराग्य चाहिए कि मुझे कभी भी व्यर्थ और व्यक्त, व्यर्थ और नेगेटिव वार्तालाप नहीं करनी है, वातावरण को दूषित नहीं करना है। हम सब एक सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। सतयुग की स्थापना बनाने के लिए बाबा ने अपने बच्चों को निमित्त रखा है, जवाबदारी दी है। इसलिए जो इस स्थापना में बाधक बातें हैं, सबसे बड़ा विघ्न है व्यर्थ बातों का, नेगेटिविटी का। किसी किसी का दृष्टिकोण हो जाता है व्यर्थ और नेगेटिव देखने का। बाबा कहते हैं बच्चे मत देखो, देखना बंद कर दो, वर्णन करना बंद कर दो, नहीं तो छोटी सी बात एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप में सामने आती है। इसलिए पहला वैराग्य चाहिए व्यर्थ बातों से, व्यक्त बातों से, नेगेटिव बातों से। समर्थ बातें, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन ही चलता रहे, उसकी वार्तालाप हो। दूसरा वैराग्य है वर्तमान समय, इस देह का अभिमान, देह का भान एक नेचुरल है और इस भान के कारण बहुत इसके ऊपर ध्यान जाता है, बार बार अटेंशन जाता है। आत्म अभिमानी बनने वाली आत्माएं इस देह भान और अभिमान से अपने आप को छुटकारा कर लेती, छुड़ा लेती हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे दैहिक चर्चाएं बंद कर दो, देह के विषय में अधिक नहीं सोचो। देह सेवा के लिए मिली है, शरीर संभालने के संभालो, लेकिन अधिक इसके पीछे टाइम नहीं गवाओ। सेवा करनी है इसलिए इसको सुलाना भी है, खिलाना भी है, समय पर दवाई भी देनी है अगर कोई आवश्यक है तो, लेकिन अधिक बातों में, देह और देह की चर्चाओं में मत जाओ, इससे वैराग्य। तीसरा एक बहुत वर्तमान समय का कलयुग का एक लक्षण दिखाई देता है, व्यक्ति की भावनाओं में पदार्थों के प्रति बहुत गहरा आकर्षण बढ़ता जा रहा है, जो विनाशी हैं, जानते भी हैं आज हैं कल छूट जाएंगे, और सब ये जानते हैं ये मेरे साथ जाने वाली कोई भी चीज नहीं है, सबके पास ये समझ है, लेकिन फिर भी संग्रह करने की एक ऐसी आदत है जो हर चीज को इकट्ठा करता रहता है, वैभव पदार्थ जो चीजें मिल गई। जैसे दुनिया में लोग आज पेट की बजाय पेटियां भरने में लगे हुए हैं, ऐसे कहते हैं ना, पेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेटियां भरने के लिए कमा रहे हैं। कितनी भ्रष्टाचार की चर्चाएं हम सब सुनते हैं। इस संसार में भी अगर कोई पैसे के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, साधनों के पीछे इतना पड़ गया जो उसका योगी जीवन उसी के पीछे जा रहा है, तो बाबा कहता बच्चे तुम राज ऋषि बच्चे हो, कहाँ अटक गए, किन साधनों में फंस गए, इनसे वैराग्य रखो। तुम्हें जो आवश्यक है वो सब कुछ मिलेंगी, जो जरूरी है सेवाओं के लिए वो अपने आप बाबा देगा आपको। लेकिन इच्छाएं मृग तृष्णा के समान हैं, एक पूरी होगी तो 10 खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इन साधनों के पीछे भागो मत, आज हैं कल खत्म होने वाली हैं। इसलिए इन वैभवों से, इन संग्रह वृत्ति से वैराग्य की जरूरत है, बेहद का वैराग्य चाहिए। और चौथी बात, जो संस्कार प्रबल हैं, कड़े हैं, ऊपर ऊपर से तो बड़े अच्छे हैं हम, दिखाई देता है बड़े योगी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अच्छी कोर्स कराते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन आंतरिक जो संस्कार छिपे हुए हैं, विकारी, अनेक प्रकार के दूषित वृत्तियों वाले, उन संस्कारों पर कड़ी नजर चाहिए, उनसे वैराग्य चाहिए। जो पुराने कड़े संस्कार हैं, स्वभाव हैं, आदतें हैं, जो वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नहीं हैं, शूद्रपने की हैं, उन शूद्रपनों की आदतों पर ध्यान जाए कि मैं बाबा का बच्चा बना, भगवान ने अपना बनाया, सच्चा ब्राह्मण बनाया, फिर भी आप सभी चेक करना, 5 साल 10 साल 20 साल भी हो जाते हैं, कई ऐसी आदतें, कई ऐसे कड़े संस्कार जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, अगर कोई ने उस पर कड़ी मेहनत नहीं की है, अगर उसकी कड़ी नजर नहीं है, अटेंशन का पहरा नहीं है, तपस्या ज्वालामुखी नहीं है, तो वो संस्कार बीच बीच में अपना जलवा दिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इनसे वैराग्य करो, इनके लिए सोचो कि ये मुझे क्यों सता रहे हैं, इन पर ध्यान दो, इनसे वैराग्य चाहिए। और पांचवी बात, बहुत कुछ हम सब ने मैं और मेरेपन की माया जाल बना ली है, मकड़ी की जाल है, बार बार ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अनेक संसाधनों के बीच में जहां पर मेरेपन की वृत्तियां आ जाती हैं, वहां पर व्यक्ति मकड़ी की जाल की तरह फंस जाता है। इसलिए वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं, मेरा बाबा और मेरे बाबा के सिवाय मेरा कुछ नहीं, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं उस पर अपना अधिकार नहीं जमाती, क्योंकि नेचुरल दृष्टि में रहता है ये सब विनाशी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब इच्छाएं और चाहनाएं मरती हैं तब उसको वैरागी कहा जाता है। तो यदि मैं अपने आप को परिवर्तन करना चाहता हूं जैसा बाबा चाहता है, कि बच्चे जब तुम बच्चों के अंदर ये वैराग्य की लहर आएगी, इन सब बातों से वैराग्य आ जाएगा, तब इस दुनिया का विनाश होगा। जब तक तुम इनमें फंसे हुए हो तब तक ये दुनिया भी उसके पीछे भाग रही है। इसलिए अपने वैराग्य की वृत्तियों को जागृत करो। इस बार की मुरली आप सबके ध्यान पर होगी 24 तारीख को। बाबा ने हम सबका ये ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे अपनी वृत्तियों के आधार से वृत्तियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, इसकी आवश्यकता है। अगर मेरी वृत्तियों में ही राग द्वेष हैं, अगर मेरी वृत्तियां ही भटक रही हैं, अगर मेरी वृत्तियां ही चंचल हैं, तो दूसरी व्यक्तियों की वृत्तियों को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। इसलिए मनसा सेवा के लिए, वृत्तियों द्वारा सेवा करने के लिए मेरी वृत्तियां कैसी होनी चाहिए, पांच चीजें मैं और सुना देता हूँ। सबसे पहली भावना, हम सबको बाबा ने कहा है सब कुछ संभालो लेकिन ट्रस्टीपन की भावना चाहिए, कुछ छुड़ाया नहीं। ये तन भी मैंने कहा बाबा आपका है, ये मन बाबा आपका है, ये धन बाबा आपका है, तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे इसको तुम संभालो लेकिन ट्रस्टी बन करके, ये तुम्हारे को मैं अमानत के रूप में दे रहा हूं। तो वैराग्य वृत्ति वाली आत्माओं की भावनाओं के अंदर ट्रस्टीशिप माना, ट्रस्टी माना बहुत ईमानदार। इस तन को कहीं भी व्यर्थ जगह पर नहीं ले जा सकते, इससे कोई व्यर्थ कर्म नहीं कर सकते। जब तन कहा जाता है तो तन में सभी कर्मेंद्रियां आ जाती हैं। कर्मेंद्रियों का समूह ही तन कहलाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय मुझ योगी आत्मा का कहना नहीं मानती तो मैंने तन बाबा की अमानत को ठीक तरह से नहीं संभाला। इसलिए बहुत जरूरी है, ये बाबा की अमानत है, इसलिए एक भी इस तन की कर्मेंद्रिय मेरे आर्डर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा ने इसको कहा है इसको शुद्ध रखना, इसको पवित्र रखना, इसको ठीक तरह से संभालना, इसको किसी भी गलत मार्ग पर नहीं ले जाना। तो ये तन बाबा की अमानत है, मन भी बाबा की अमानत है, इसलिए कोई भी इधर उधर के नेगेटिव संकल्प, विकारी संकल्प अगर मन में बार बार आते हैं, माना मैंने बाबा की समानत में ध्यान नहीं दिया, इसमें केवल एक बाबा ही रहे और कोई भी मन के अंदर अपना निवास न करे, मन मनाभव होकर के रहे, इसलिए अमानत संभालने की जरूरत है। और ट्रस्टी आत्माएं मन को कहीं भी विचलित होने नहीं देती। और धन जो बाबा ने दिया है, आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के बच्चे किस तरह से धन का प्रयोग करते हैं, कहीं पर भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, देखा देखी में अधिक खर्च नहीं कर सकते, किसी से भेंट नहीं कर सकते कि इसने ऐसा भबका किया, इसने ऐसा खर्चा किया, मैं इतना करूं, बाबा ने मना किया है। बच्चे ये बाबा की अमानत है, तुमने तो समर्पित कर दी, अब बाबा कहते हैं इसको श्रेष्ठ कार्य की तरफ लगाना, कहीं भी व्यर्थ न जाए, एक पैसा भी बाबा का व्यर्थ में यूज न हो। तो ऐसी ट्रस्टीशिप की, ट्रस्टीपन की भावना वैरागी आत्माओं की नेचुरल रहती है। दूसरी एक अनासक्त वृत्तियां हैं, किसी चीज में भी आसक्तियां नहीं है, कोई भी चीज वैरागी आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, अनासक्त है। जिसकी आसक्ति नहीं वो अनासक्त रहता है, न देह में है, न वस्तुओं में है, न किसी की विशेषताओं में है, न किसी साधनों में है। मैं इसके बीच में एक बात आपको सुना दूं, आजकल की दुनिया में, साइंस के युग में, बहुत से साधनों को साइंस ने हमारे आगे परोसा है, प्रस्तुत किया है, लेकिन तीन साधनों ने बहुत अधिक नुकसान किया है। सेवा के अच्छे साधन सबके पास है, अधिकतर सभी ने अपने हाथ में एक मोबाइल रखा है, सुख का साधन भी है, संबंध का साधन है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का, मिलन मनाने का, समाचार लेन देन करने का अच्छा साधन है, लेकिन इसका प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये माया बन करके तो नहीं है? अधिकतर व्यर्थ वार्तालाप के लिए तो हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। जो बातें आती हैं हम एक दूसरे से कर लेते हैं, कह देते हैं, और घंटों बातें करके अपनी मनी भी व्यर्थ करते और अपने मन को भी बेकार करते और तन के अंदर भी कैंसर जैसे जीवाणु डाल देते हैं एक मोबाइल के द्वारा। इसलिए इस साइंस के साधन को प्रयोग करने की छूट जो मिली है देखना, कई बार क्या होता है एक छोटी सी बात कोई घट जाती है उसको समा नहीं पाता व्यक्ति, और उसी समय फोन करके इधर से उधर उधर से उधर वातावरण में फैला देता है, लोगों को बता देता है, उनकी भावनाओं को दूषित कर देता है, ये बहुत बड़ा पाप बन जाता है। इसलिए एक मोबाइल की माया इस कलयुग के अंत में मैं समझता हूँ बहुत साधन है, लेकिन बहुत वार कर रही है जो मन की स्थितियों को बिगाड़ रही है। कई घंटों रातों रात छिप छिप करके बातें करते हैं। और दूसरी एक माया इस समय इंटरनेट की आई है, जो जानते हैं इंटरनेट हाथ उठाएंगे। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, हमने कहा आप इंटरनेट में बहुत टाइम देते हो, कितने घंटे सेवाएं, कितने घंटे इंटरनेट पर बैठते हो, तो मुझे कहने लगा भाई साहब मैं 10 बजे रात को बैठता हूँ, 6 बजे तक सुबह तक बैठता हूँ। हमने कहा फिर क्या करते हो, बोला 6 बजे सो जाता हूँ 2 बजे उठता हूँ। ये है इंटरनेट, सेवाएं अलग हैं, वो सेवाएं हो रही हैं, कोई नौकरी है, कोई विदेश के साथ कोई का विशेष सेवाएं हैं, वो अलग चीज है, जगना पड़ता है नौकरी के कारण, लेकिन कई शौक मौज के कारण या कई सेवा समझ करके मुरलियों पर ही अध्ययन करने बैठ गए, मुरलियों के क्विज बनाएंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनका माइंड क्या होगा आप सोच सकते हो, जो रात भर जगता होगा और जो रात भर अगर वो स्क्रीन देखता होगा किस प्रकार का माइंड होगा। हम बाबा के बच्चों को यही कहते कि बाबा ने जो हम सबको दिनचर्या बनाई है, इस दिनचर्या में जो इंटरफेयर करने वाली बातें हैं, और कई इस फेसबुक के द्वारा, इस इंटरनेट के द्वारा अपने ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हैं जो फ्रेंड्स फिर क्या करते हैं, आपस में मिल करके सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ दैहिक संबंध बना लेते हैं। इसलिए ये साधन सुख के हैं या दुख के वो आप सब सोच सकते हैं, फेल तो होने हैं लेकिन जब तक हैं तब तक हम ब्राह्मणों की बुद्धि को नेगेटिव की तरफ तो नहीं लिए जा रहे हैं। क्या वो अमृत वेला करेगा जो रात को 12-1 बजे तक इंटरनेट देखता होगा, कैसे उसका योग लगेगा विचार करना। इसलिए ऐसी माया से प्लीज वैराग्य वृत्ति रखो, नहीं चाहिए बाबा को ऐसी सेवाएं। इसलिए बहुत टाइम टेबल पर ध्यान, और ऐसे कोई भी सीन अश्लील जो इस के द्वारा हम सबको दिए जा रहे हैं उन पर अगर किसी का ध्यान गया तो स्वप्न संकल्प वृत्तियां कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती हैं। इसलिए योगियों को, विशेष करके संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को जो सत्य धर्म की स्थापना के लिए निमित्त हैं, जो सतयुग की दुनिया लाने के लिए फाउंडेशन है, वो पवित्रता की जननी को इस माया की जाल में पतित नहीं बना देना। इसलिए आवश्यक है हम सब ध्यान दें इंटरनेट, मोबाइल और टीवी, इस सीरियल के बीच में सीरियल जो आ रहे हैं एक के बाद एक, इंटरेस्ट होता है कहेंगे 5 मिनट समाचार देख लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत से सेवा केंद्रों से समाचार मिलते हैं, स्टूडेंट टीचर्स की भी कंप्लेंट लिखते हैं दादियों को कि जब समय मिलता है बहनें भी टीवी खोल के बैठ जाती हैं, सीरियल देखती हैं, क्या उनकी स्थिति होगी, क्या दूसरों को ज्ञान देंगे। इसलिए प्लीज सभी ब्राह्मण आत्माएं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं, जो कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे, हम वैरागी आत्माएं हैं, इन विनाशी चीजों में हमारा आकर्षण क्यों है, वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं इन साधनों की मृग माया के पीछे आकर्षित नहीं होती। इसलिए ध्यान दे करके अनासक्त बनो, अपनी वृत्तियों को प्राम बना लो। अनासक्त के बाद है उपराम वृत्ति। उपराम रहना ही राम के पास है ऊपर, क्योंकि जाना है तो उसी के पास रहना है। और जब उपराम वृत्ति बनेगी तब साक्षी बन सकोगे, क्योंकि बाबा अभी हम सब बच्चों को साक्षी दृष्टा बनाना चाहता है। हर एक के पार्ट को देखो, बहुत दुख की घटनाएं घटेंगी, अति होगा हर चीज में। बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ गिरेंगे। अगर साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं होगी तो तुम उनकी सेवा नहीं कर सकोगे, दुखी हो जाओगे। बहुत साक्षी होकर अपने हिसाब किताब को भी चुकतू करना है। और अगर कोई आत्माएं गलत कर रही हैं, मैं हमेशा कहता हूं प्लीज तुम अपनी स्थिति को बिगाड़ करके उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करो। मेरी स्थिति बिगड़ गई तो मैं उनको क्या सुधारूंगा। इसलिए आवश्यक है अगर कोई गलत कर रहा है, हम अपनी भावनाओं को बड़ों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ठीक हो जाएं अच्छी बात है। बाबा का नाम बदनाम न हो, यज्ञ का नाम बदनाम न हो, हमारे इतनी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान तो आवश्यक है, देना चाहिए। लेकिन अपनी स्थिति को बिगाड़ करके और वातावरण को बिगाड़ करके हम किसी को कहें ठीक हो जाए, इसलिए जरूरी है साक्षी दृष्टा स्थिति की। पार्ट को साक्षी होकर के देखो, बात दे दो और हल्के हो जाओ, बड़ों को बता के निश्चिंत हो जाओ। अपने आप ठीक होगा, नहीं ठीक होगा तो बाबा कहता है मैं सुधारूंगा, आपकी जवाबदारी नहीं है, बाबा अपने आप सुधारेगा। जैसे भी सुधारना होगा उसको, कॉन्ट्रैक्ट उसका है, मेरा नहीं है। तो इसलिए बहुत निश्चिंत स्थिति में साक्षी दृष्टा रहो, तब बनेगी विदेही स्थिति। ऐसे विदेही स्थिति नहीं बनती। जब तक बेहद का वैराग्य वृत्ति नहीं है, जब तक उपराम और साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं है, तब तक सेकंड में फुलिस्टॉप नहीं लग सकता और विदेही स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हम सब ब्राह्मण आत्माएं और पांच बातों पर ध्यान दें। एक है सबसे महान शत्रु, जो अधिकतर अभी दिनचर्या के अंदर प्रवेश कर गया है, वो है आलस्य। नियम पूर्वक योग में बैठना अच्छी बात है, लेकिन थोड़े समय के ही बाद बुद्धि थकी हुई होने के कारण क्या होता है, आलस्य रूपी शत्रु योग का आनंद लेने नहीं देता, मुरली का रस लेने नहीं देता। मुरली चल रही है, उसके बीच में भी झूमने लगते हैं। आलस्य माया अपना वार कर देती है। इसलिए आलस्य अलबेलापन, और सूक्ष्म में अहम। मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं हेड हूं, मैं बड़ा हूं, ये जो सूक्ष्म में अहम है, मैंपन है, वो आलस्य और अलबेलेपन का जन्मदाता है। इसलिए इन तीन आ से अपने आप को मुक्त कर लो। साथ साथ बहुत समय गफलत में गया हम सबका। बाबा कहता है बच्चे अचानक कुछ भी हो जाएगा फिर नहीं कहना बाबा ने नहीं बताया। अभी पिछली बार आपने देखा होगा जो डायरेक्ट टीवी पर बाबा को देख रहे थे, उनके फोन आना शुरू हो गए कि बाबा मुरली चलाते चलाते दृष्टि देते देते सेकंड में चला गया। बहुतों के प्रश्न उठे ऐसा क्या हो गया। बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा के साथ पिकनिक करते हैं, बहुत कुछ मनोरंजन करते, बाबा अचानक चला गया। फिर बुलाया, फिर आह्वान किया दोबारा, फिर आया बाबा। और बाबा ने तो एक शब्द में अपने आप को हल्का कर लिया, बाबा ने आंख मुचोली कर ली, एक सेकंड में गया फिर आ गया। लेकिन ये सब सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अब समय की गति बहुत फास्ट जा रही है, पार्ट परिवर्तन होगा अचानक। और यही पार्ट परिवर्तन नहीं, लेकिन इस ड्रामा के नाटक में भी परिवर्तन बहुत समीप आ गया है। इसलिए हम सब पहले से वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करके विनाश हो एकदम अचानक हाहाकार मच जाए और फिर वैराग्य आए तो बाबा कहेगा ये तो तुम्हारा समय शिक्षक बना। मैं शिक्षक हूँ, मैं तुमको कह रहा हूँ कि बच्चे ऐसा होने वाला है, इसलिए जब होने वाला है तुम जानते हो तो ज्ञानी तू आत्माएं समझ के आधार से अपनी बुराइयों को, अपने सूक्ष्म विकारों को, अपनी आंतरिक स्थिति को चेक करें और चेक करके उसको चेंज करने के लिए बहुत दृढ़ता का संकल्प लें। गफलत में समय न चला जाए और कभी भी दूसरों को देखना नहीं, दोष दृष्टि, दूसरों को देखने की दृष्टि और संघ का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाता है। कहते ये भी तो ऐसे कर रहा है, ये भी तो ऐसे कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है तो इसका मतलब मेरा भी ध्यान न हो। भले उसका ध्यान नहीं है लेकिन बाबा ने हम सबको एक ही स्लोगन दिया है, जो ओटे सो अर्जुन, जो पहले करेगा वो पहले अव्वल नंबर में आ जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अपनी आंतरिक स्थिति को चेक करके, अपनी आंतरिक कमी कमजोरियों को चेक करके दिल से संकल्प करें बाबा ये आपका है, लेकिन वो तभी बाबा का होगा जब हम सबको अंदर से वैराग्य आ जाएगा कि ये सब हमारे आंतरिक दुश्मन हैं जो हमारी अंदर की स्थिति को बिगाड़ने वाले हैं, इनसे मुझे वैर भी है और इनसे मेरा कोई राग नहीं है। तो अपनी आंतरिक स्थिति में जो कमी कमजोरियां हैं उनको बिल्कुल नफरत की दृष्टि से देखकर उनको समाप्त करके दृढ़ता के संकल्प के साथ हम सब बाबा की स्थापना के कार्य को संपन्न कर सकेंगे। और जब बहुत बड़ा विनाश होगा तो सबके अंदर वैराग्य होगा, बहुत बड़ा विनाश, और उसके बाद जब वैराग्य की धरनी बनेगी, जो बचेंगे वो क्या करेंगे, वैराग्य की धरनी में होंगे, फिर देवताओं का जन्म होगा। योग बल उन देवताओं की आत्माओं का अपना, उतरने वाली आत्माओं का, और यहाँ की आत्माएं जो बचेंगी उनके अंदर वैराग्य की भावनाएं। ये वैराग्य और योग बल देवताओं को इस सृष्टि पर उतारेगा। तो हम सब पहले से बेहद के वैरागी बन करके, एक बाबा दूसरा न कोई, सब चाहनाएं बाबा पर अर्पित कर दो, बाबा अपने आप हमारी मन इच्छित जो आवश्यकताएं वो पूरी करेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम बाबा पर संपूर्ण समर्पित होंगे और अपने आप को वैराग्य वृत्ति में रखेंगे तो अपना परिवर्तन बहुत सहज कर सकेंगे और दिखाई देगा कि जो कल मेरी आदतें थीं वो आज नहीं है। ओम शांति।